ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में नवाचार की संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। उन्होंने अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म नवाचार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडेप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है।
युग्म का संस्कृत में अर्थ संगम है। यह अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवोन्मेषक जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जोरदार तरीके से उठाया है। साथ ही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे को भी सबके सामने रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल के एक टेलीविजन साक्षात्कार में संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस साक्षात्कार में आतंकी गुटों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तान के इतिहास को लेकर वहां के रक्षा मंत्री के कबूलनामे को पूरी दुनिया ने सुना है। उन्होंने कहा कि इस कबूलनामे ने किसी को आश्चर्यचकित नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद को भड़काने और एक क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान को एक दुष्ट देश के रूप में बेनकाब कर दिया है।
It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer Turn a blind eye.
इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। न्यूजर्सी, कनेक्टिक और ओहायो में भारत अमेरिकी समुदायों के विभिन्न संगठनों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए आतंकी हमले के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अलग अलग पत्रों में दोनों नेताओं ने आग्रह किया है कि राष्ट्रीय एकता और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। चारधाम यात्रा कल से शुरू हो रही है। आकाशवाणी से चारधाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 से 11 बजे तक होगा जबकि यमुनोत्री धाम का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई से सुबह 6 बजे होगा जबकि बद्रीनाथ धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। यात्रा से जुड़ी रिपोर्ट भी कल से 4 मई तक हर दिन शाम 7:30 बजे से 7:45 तक प्रसारित की जाएंगी। कनाडा में मध्यावधि चुनावों का मतदान लगभग पूरा हो गया है। रुझान के अनुसार मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी 160 सीटों पर आगे है जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 151 सीटों पर बढ़त हासिल है। बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 343 सीटों में से कम 172 सीटें जीतनी होंगी। वैश्विक संकेतों के बीच आज सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार मिलने तक सेंसेक्स 111 अंक बढ़कर 80,339 पर था जबकि निफ्टी 19 अंक बढ़कर 24,348 पर पहुंच गया। महिला त्रिकोणीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। कोलंबो में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 30 ओवर में एक विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में रविवार को भारतीय टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया था। दक्षिण अफ्रीका का यह श्रृंखला में पहला मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।